Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हुए हैं भव्या पांडे के साथ। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 6 अगस्त 2025 को अमेरिका में आयात होने वाले भारतीय सामानों पर अतिरिक्त टैक्स लगाने की घोषणा की है। इससे पहले 1 अगस्त 2025 को 25% टैक्स लगाया गया था, जिसका उद्देश्य रूसी यूक्रेन संघर्ष को लेकर भू राजनीतिक तनाव के बीच भारत द्वारा रूसी तेल की निरंतर खरीद को रोकना था। आज हम जुड़े हैं दो विशेषज्ञों के साथ, प्रदीप तनेजा और नताशा भास्कर झा। आज हमें इस पूरी स्थिति का विवरण देंगे और बताएंगे कि कैसे अमेरिका के ये जो टैरिफ्स हैं, ये भारत के लिए आर्थिक संकट से कई ज्यादा है। तो प्रदीप जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि अमेरिका ने भारत पर जो 25% का टैरिफ लगाया था, उसके बाद रूसी तेल की खरीद पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लग गया है, जिससे कि जो कुल टैक्स है वो अब 50% हो गया है। तो इस संदर्भ में आप हमें अगर कुछ और जानकारी दे पाएं।
प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहले कहा कि 30 जुलाई को मेरे ख्याल से उन्होंने एक फैसला सुनाया कि वो उन्होंने प्रेसिडेंशियल डिक्री एक साइन किया, उसमें भारत के ऊपर 25% का एक टैरिफ लगाएंगे भारत से जो इम्पोर्ट्स आते हैं अमेरिका में। और उसके बाद 7 अगस्त को उन्होंने कहा कि क्योंकि भारत उन देशों में से एक है जो कि रूस से तेल इंपोर्ट करता है, तो उस पर वो 25% का अलग से एक और टैरिफ लगाएंगे, तो कुल मिला के 50% हुआ। अब भारत कोई अकेला देश नहीं है जो रूस से तेल इंपोर्ट करता है, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। चीन भी करता है, चीन एक्चुअली भारत से ज्यादा इंपोर्ट करता है, लेकिन अभी तक प्रेसिडेंट ट्रंप ने चीन पे ऐसा कोई प्यूनिटिव टैरिफ नहीं लगाया है, क्योंकि चीन के साथ उनके ट्रेड नेगोशिएशन चल रहे हैं। और अभी सुना है कि एक दो दिन में पता लगा है कि उन्होंने उस चीन को जो रिप्रीव जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, मतलब जो थोड़ा ढील दी थी, वो बढ़ा दी गई है नवम्बर तक। तो मतलब नवम्बर तक अब चीन के ऊपर कोई एक्स्ट्रा टैरिफ नहीं लगाए जाएंगे। तो इसको लेके काफी मतलब बहस हो रही है कि भारत, जिसके साथ अमेरिका के इतने अच्छे संबंध थे, प्रेसिडेंट ट्रंप ने भारत को क्यों निशाना बनाया है। चीन पर एक्स्ट्रा टैरिफ नहीं लगाया है लेकिन भारत के ऊपर लगा दिया है
जी।
तो इसको लेके काफी बहस हो रही है और इसमें काफी अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्यों। कुछ लोगों का मानना है कि इसमें हो सकता है कि दोनों नेताओं के बीच में, प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच में कुछ मतभेद है, जिसको लेके प्रेसिडेंट ट्रंप भारत को ज्यादा भारत के ऊपर ज्यादा टैरिफ लगा रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि दो नेताओं के बीच में कोई मतभेद हो, उसको लेकर ऐसा हो रहा हो। मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप भारत और अमेरिका के जो जियोपॉलिटिकल संबंध बने हैं पिछले 20 सालों में
जी।
जो इंडो पैसिफिक की कॉन्सेप्ट है, जिसमें भारत एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो मुझे लगता है प्रेसिडेंट ट्रंप टैरिफ को लेकर इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गए हैं कि उनको जियोपॉलिटिक्स का जो रोल होता है बायलैटरल रिलेशनशिप में, वो भूल गए हैं
जी।
वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एक गलती है, बहुत बड़ी गलती है उनके उनकी तरफ से।
जी जी प्रदीप जी, हमने हाल ही में देखा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस चीज को लेकर बयान दिया, लेकिन वो जो कटाक्ष था वो कोई प्रत्यक्ष रूप से नहीं था, उन्होंने डायरेक्टली किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये जरूर बोला कि भारत के जो किसान हैं उनके वो साथ हैं। तो इस तरह का ये जो बहुत ही अस्थिरता की स्थिति चल रही है, इस पर एनालिस्ट और जो एक्सपर्ट्स हैं, विशेषज्ञ हैं, वो इसे किस तरह से देखते हैं?
हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा, भारत और अमेरिका के संबंधों में अस्थिरता आई है, इसमें कोई शक नहीं है, और इसके लिए प्रेसिडेंट ट्रंप जिम्मेदार है, पूरी तरह से जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा अपने, जिसका उनके प्रतिक्रिया का जिक्र किया, उन्होंने दिल्ली में एक सभा में उन्होंने कहा कि इसकी मुझे खुद भी कीमत चुकानी पड़ सकती है, और उन्होंने अमेरिका का नाम नहीं लिया, प्रेसिडेंट ट्रंप का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि भारत के किसानों को, भारत के मछुआरों को वो बचाएंगे, उन पर कोई नुकसान नहीं आने देंगे। तो उनका रेफरेंस जो है वो इस बात को लेकर था कि जो भारत और अमेरिका के बीच में जो व्यापारिक बातचीत चल रही थी, ट्रेड नेगोशिएशन चल रहे थे, उसमें भारत के ऊपर दबाव डाला जा रहा था कि भारत जो कृषि के जो उत्पाद हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो हैं, उनमें भारत जो जो प्रोटेक्शन है भारत के फार्मर्स के लिए, उसमें भारत के जो टैरिफ्स हैं या नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं, भारत उनको हटाए या उनको काफी हद तक मतलब कम कर दे। क्योंकि देखिए भारत के किसान जो हैं वो छोटे किसान ज्यादा हैं, भारत के भारत का जो आम किसान है उनकी लैंड होल्डिंग जो है बहुत छोटी सी है। तो इंडिया में हमारे यहाँ जो किसान हैं वो एसेंशली लाइवलीहुड वाले हैं, ऐसे किसान हैं जो कि मतलब कमाते हैं और खर्च करते हैं, उनकी कोई ज्यादा संपत्ति नहीं है, उनकी कोई बहुत ज्यादा लैंड नहीं है, वो ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका के जो फार्मर्स हैं उनकी तरह नहीं है। तो भारत सरकारें, चाहे वो मोदी की सरकार हो, चाहे मोदी से पहले यूपीए की सरकार थी प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह की, बल्कि इंदिरा गांधी के टाइम से किसानों को एक तरह का प्रोटेक्शन दिया गया है, उनको एक सपोर्ट प्राइस दिया जाता है, जिसमें कि भारत सरकार उनसे खासतौर से जो ग्रेन होता है, जो अनाज वो पैदा करते हैं, उसको खरीदने में भारत सरकार एक कीमत तय करती है ताकि उनको मिनिमम कम से कम सपोर्ट प्राइस मिल सके, और उनको जो आयातित अनाज होता है उससे भी प्रोटेक्शन मिलती है। मतलब भारत टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स यूज करता है जिससे कि जो बाहर के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनको इंडिया में एंटर होने में काफी मतलब दिक्कत होती है। तो अमेरिका भारत पे दबाव डाल रहा था उन नेगोशिएशंस में, ट्रेड नेगोशिएशंस में, कि भारत जो जिस तरह की प्रोटेक्शन भारत के किसानों को या मछुआरों को देता है उसको खत्म करे। तो भारत ने कहा ये तो हम नहीं कर सकते, ऐसा तो नहीं होगा। तो उसके लेके उनको जो ट्रेड नेगोशिएशंस अब जो है हमारे एकदम स्टेलमेट में पहुंच गए, तो आगे उसमें कोई तरक्की नहीं हो पा रही थी। जबकि भारत ने, सुना जाता है कि भारत के जो नेगोशिएटर्स थे, जो अमेरिकन नेगोशिएटर्स के साथ बातचीत में लगे हुए थे, उन्होंने काफी कंसेशन दी थी। उन्होंने ये भी कहा था कि जो इंडस्ट्रियल गुड्स हैं, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं अमेरिका के, उनकी भारत में एंट्री के लिए टैरिफ बहुत कम कर दिया जाएगा, बल्कि कई चीजों पर खत्म भी कर दिया जाएगा। तो जैसे अमेरिकन कार्स हैं, भारत ने कहा कि अमेरिकन कार्स पर हम टैरिफ बहुत कम कर देंगे। तो अमेरिका के जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भारत को कारों का निर्यात कर सकते हैं उसके बाद, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप उससे नहीं माने और उन्होंने कहा कि ये मतलब काफी नहीं है, आपको जो एग्रीकल्चर का जो एरिया है, खेती का जो एरिया है, कृषि का एरिया है, इस पर भी आपको प्रोटेक्शन खत्म करनी होगी। तो उसको लेके नेगोशिएशन सुना है कि मतलब एकदम बंद हो गए, ठप हो गए। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसके बाद कहा कि ठीक है, हम क्योंकि आप रूस से तेल निर्यात करते हैं, आयात करते हैं, तो हम आपके ऊपर ये 25% एक्स्ट्रा पेनल्टी लगाएंगे। तो देखिए इसमें कई इश्यूज हैं, इसमें एनर्जी का इशू है, तेल का इशू है, इसमें जो बायलैटरल ट्रेड नेगोशिएशंस थे उनका इशू है, और साथ साथ जियो पॉलिटिक्स का इशू भी है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने काफी अनयूजुअली पाकिस्तान के जो मिलिट्री चीफ हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उनको व्हाइट हाउस में बुला के लंच पर उनको निमंत्रित किया। तो ये भी सिग्नलिंग थी, भारत को एक तरह की सिग्नलिंग थी। तो इसको लेके मतलब ये जो एनर्जी का इशू है, ट्रेड नेगोशिएशंस का इशू है, जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं, ये सब कंबाइंड हो गए हैं इसमें. और भारत सरकार का जो रवैया है, मुझे लगता है ये है कि भारत सरकार ने एक नीति अपनाई है कि हम जो अपने किसान हैं हमारे, उनको अभी प्रोटेक्ट करते रहेंगे, उनको जो आयात है, एग्रीकल्चरल कमोडिटी का आयात है, उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचने देंगे. लेकिन फिर भी भारत ने ट्रंप सरकार के इन नीतियों का कोई बहुत ज्यादा आलोचना नहीं की है, भर्त्सना नहीं की है. तो इसका मतलब भारत सरकार ये चाहती है कि अमेरिका के साथ नेगोशिएशंस चलते रहें और ये जो उन्होंने कदम उठाया है ट्रंप साहब ने, उसको वो वापस लें, ये जो एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लगाया है, और बाकी जो 25% वैसे भी लगाया उसको भी कम करें. क्योंकि भारत और अमेरिका की जो रिलेशनशिप है, जो संबंध है, वो अगर आप उसको स्ट्रेटेजिक रूप से देखें, सामरिक ढंग से देखें, तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, अमेरिका के लिए भी और भारत के लिए भी.
नताशा भास्कर झा, जो कि न्यूलैंड ग्लोबल ग्रुप की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, इस पूरे मुद्दे को इस तरह से देखती हैं।
यूएस इंडिया के बीच ट्रेड टाइज आज एक टेस्टिंग फेज में है, लेकिन टूटने वाले नहीं है. 2024-25 में दोनों देशों का बायलेटरल ट्रेड 131.8 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया और यूएस 4 साल से इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है. सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज ट्रेड भी 83 बिलियन डॉलर्स का है, मतलब इकोनॉमिक इंटीग्रेशन दोनों देशों के बीच में काफी डीप है. अब नए यूएस टैरिफ्स के साथ जो लगभग 64 बिलियन डॉलर्स के इंडियन एक्सपोर्ट्स को टारगेट करते हैं, एक शार्प झटका जरूर कह सकते हैं, स्पेशली अगर हम एमएसएमई ड्रिवन सेक्टर्स जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल्स, ऑटो कंपोनेंट्स की बात करें. मार्जिन स्क्वीज होंगे, ऑर्डर्स रीनेगोशिएट होंगे और एक्सपोर्टर्स जरूर यूरोप, मिडल ईस्ट और आसियान की तरफ पिवट करेंगे. लेकिन आईटी सर्विसेज हुआ, क्लीन एनर्जी हुआ, डिफेंस टेक जैसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स मुझे लगता है अनटच्ड है और जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का बैकबोन है. इसी बैकड्रॉप में अगर बात करें तो 15 अगस्त का अलास्का समिट बिटवीन प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन, एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है. इंडिया ने इसे वेलकम किया है अपने नॉट एन एरा ऑफ वॉर स्टैंड्स के साथ. और अगर यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में डीएस्केलेशन होती है तो सैंक्शंस प्रेशर्स कम हो सकता है और यूएस इंडिया ट्रेड टॉक्स के लिए पॉजिटिव हवा बन सकती है. लेकिन अगर यूएस रशिया के बीच अलाइनमेंट यूएस के लार्जर अलायंसेस को डायल्यूट करता है तो इंडिया को अपनी बैलेंसिंग एक्ट और टाइट रखनी पड़ेगी. तो यूएस इंडिया टाइज की स्ट्रेंथ मेरे हिसाब से सिर्फ ट्रेड में नहीं है, क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग की भी बात की जाए, हमारे जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज और डिफेंस इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स की जो पार्टनरशिप है, इस रिलेशनशिप को और स्ट्रेटेजिक डेप्थ देते हैं. साथ ही इंडिया का 4 ट्रिलियन इकोनॉमी का स्टेटस, टेक स्केल और यंग वर्कफोर्स उसे ग्लोबल ग्रोथ के सेंटर स्टेज में रखता है. तो इन सबको देखते हुए इतना इजी नहीं है ये कहना कि बढ़ते हुए टैरिफ्स यूएस की तरफ से इस रिलेशनशिप के लिए एक बहुत बड़ा झटका है. एक स्ट्रेटेजिक और डीपर नेगोशिएशन की जरूरत है, बट बॉटम लाइन ये है कि एक मोमेंट ऑफ प्रेशर है, रप्चर नहीं है. दोनों तरफ को जल्दी मेरे हिसाब से एक काव आउट नेगोशिएट करने की जरूरत है, ट्रस्टेड सप्लाई चेन्स बिल्ड करनी चाहिए और स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट को प्रोटेक्ट रखने की जरूरत है, क्योंकि इस डेकेड का ड्राइवर ट्रेड फ्रिक्शन नहीं है बल्कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट होगा.
इस अंश में प्रस्तुत की गई सभी जानकारी व्यक्तिगत है. SBS न तो इससे सहमत है और न ही असहमत. SBS न्यूज के लिए इस खबर को आप सबके सामने SBS हिंदी में लेकर आए हैं भव्या पांडे.
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद. हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं.